भाग्यवान है भगवान पढ़ाते हैं। बेहद हर्षाते हैं अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है गजब खुशी बेहद हर्षाते हैं।
हम कितने भाग्यवान हैं।
ओम शांति। सम्राट अशोक जब कलिंग का युद्ध हुआ तो बहुत ही उसको वैराग आ गया। क्यों वैराग आया? कि इतना खून इतना हत्याएं देख करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो वैराग क्यों आता है जीवन में? जब वैराग का आधार क्या है? वैराग क्या है? जब नेगेटिविटी आ जाती है तो बाबा ने हमें क्या कहा है कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाओ। एक बार बाबा ने कहा, बच्चे बाबा का यहां मित्र रहता है, तो बहुत खुशी हुई, बाबा का मित्र, वाह इसको तो मिलना चाहिए। तो मालूम पड़ा है तो बहुत गाली देता है बाबा को, माना कैसे शुभ भावना रखी। बाबा ने हम बच्चों के प्रति कितनी ऊंची भावनाएं रखी। कहां हम कलयुगी पुरानी दुनिया में नरक में, नरक के कीड़े कहते हैं ना, जो रो रो नरक, इतना बाबा ने हमें ऊंचा बनाया, इतना हमें महान बनाया, जो अपने सिर का ताज बना दिया। कहां हम दुख अशांति रोगी पतित जो कोई काम के नहीं रहते, बाबा के दर कोड़ी समान जीवन बन गया था, तो उसको बाबा ने क्या बना दिया? हीरे समान जीवन बना दिया। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ये हमारा जीवन क्या है? हीरे तुल्य। तो ये हीरे तुल्य जीवन को जब हम भूल जाते हैं, भूलते क्यों हैं? भूलने का आधार है कहां न कहां हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो बाबा ने हमारे गुण देखे, अवगुण नहीं देखा। बाबा रोज हमें क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, नूरे रतन, लकी सितारे, पद्मा पदम भाग्यवान। बच्चे तुम तो विश्व के मालिक बनने वाले हो। तो कितना ऊंचा सम्मान बाबा ने दिया। तो जो इतना ऊंचे सम्मान को जब हम याद करते हैं तो नेगेटिविटी एकदम जैसे कुछ लगती नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम टॉप की स्थिति में रहेंगे तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगी, राय तो क्या रुई बन जाएगी। जब तक हम उस टॉप की स्थिति करते हैं, टॉप की स्थिति में नहीं रहते हैं, तो फिर ये सब परिस्थितियां आती रहती हैं। तो परिस्थितियों पर हमें विजय पाना है। परिस्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है, और हमारी क्या है? स्वस्थिति है। तो हमारी कैसी ऊंची स्वस्थिति है? जो स्वमान है वो हमारी ऊंची स्थिति है। परिस्थिति बाबा कहते हैं वो रावण की स्थिति है, रावण का राज्य है। तो हम तो अभी रावण के राज्य से हमारा लंगर उठ चुका है। अभी तक भी हमारा कहां भी मोह है, कहां भी आसक्ति है, कहां भी लगाव है, झुकाव है, तो अभी तक हमारा लगाव अभी उठा नहीं है। तो हमारा लगाव उठ जाए। लगाव क्यों नहीं उठता है? लगाव कैसे उठे? उसके लिए हम बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ की दौड़ में कौन आगे जा सकता है? पुरुषार्थ की दौड़ में वही आगे जा सकता है जिसने वैराग्य को कूट कूट के अंदर भरा हुआ है। अगर वैराग्य कूट कूट के अंदर नहीं भरा है तो हम पुरुषार्थ की दौड़ में आगे नहीं जा सकते। तो जो भी बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण ले लो। ब्रह्मा बाबा, बाबा ने कहा ना आज, बाप को फॉलो करो, बाप को फॉलो करो, लेकिन बाबा ने कहा एक्यूरेट फॉलो करो। देखो बाबा ने कहा कि जो बाप को फॉलो करो, माना बाबा को जो है जैसा है उसी रीति से जानना, मानना और चलना। जानते तो है बाबा को, बाबा हमारे पिता है, लेकिन उसको जानने के बाद उसको मानना, उसके बाद फिर चलना। कैसे बाबा ने इस देहभान का त्याग किया, कैसे इस प्रॉपर्टी का सब कुछ त्याग किया? क्यों त्याग किया? क्या कुछ था, कुछ कमी थी क्या बाबा के पास? लेकिन जब बाबा को साक्षात्कार हुआ, और बाबा का जीवन कैसा था, लौकिक में भी कैसे बाबा उपरम रहते थे, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ करते हुए, जैसे कि न्यारे न्यारे थे। तो आत्मा कौन सी थी वो? श्री कृष्ण की 84 जन्म की आत्मा थी। तो कैसे अंतिम जन्म तक भी कैसे रॉयल संस्कार रहे? तो वो रॉयल्टी और वो पर्सनालिटी, वो सब कुछ कैसे त्याग किया, कैसे वैराग्य आ गया बाबा के जीवन में? वैराग्य आने का कारण क्या रहा? कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम तो विश्व के मालिक बनने वाले हो, कितने खुशी हुई, आहा ओहो क्या बनने वाला। माना दिल से निकलता था, ओहो क्या बनूंगा। खगिया मारते थे खुशी में, डांस करते रहते थे। जैसे मिचलू बच्चा कैसे चलता है वैसे चलते थे कि बच्चे भविष्य में मैं यही बनूंगा। तो भविष्य कितना उज्जवल है हमारा, तो जब हमारा उज्जवल भविष्य हमें याद नहीं रहता है तो फिर नेगेटिविटी आ जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें तो क्या बनना है, विश्व का मालिक बनना है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, कितना ऊंचा पद है। क्या गायन है, सर्वगुण संपन्न, सर्वगुणों में संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक। देखो डबल अहिंसक क्यों कहा, देखो बाबा हमें बच्चे कहते हैं कि बाबा कोई भी जैसे कोई सांप होता था तो वो लपेट के जाता था बाबा को, तो बाबा कहते थे बच्चे इसको मारना नहीं, बच्चे को मारना नहीं। देखो बाबा की कितनी भावना ऊंची रही कि सांप को भी बाबा कहते थे तो बच्चा है, बच्चे को दूध पिला के उसको छोड़ के आओ। हाँ? छोड़ के आए, दूर छोड़ के आएंगे फिर नहीं आएगा ना। माना बाबा को तो सभी के प्रति प्यार रहता था, गैया थी तो एक बाबा ने गई बेच दिया था, माना दे दिया था किसी को, तो वो दो दिन के बाद वापस आ गई। लेकिन हर एक आत्मा के प्रति आत्मिक भावना, और वो प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, कितनी उदार भावना, कितनी आत्मिकता, कितना आत्मा का अभ्यास किया। मैं भी आत्मा हूँ, यशोदा भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। बाबा जैसे जिसको परिचय देता था कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो जैसे आत्मा हो ऐसे बोलते थे और चित्र बनाते थे शरीर का, इसमें आत्मा बताते थे, तो वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते थे, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता था, निश्चय बुद्धि हो जाते थे। निश्चय बुद्धि अभी हम भी कोर्स कराते हैं, हम भी बताते हैं, लेकिन क्यों नहीं आत्मिक स्थिति में स्थित होते लोग, क्यों नहीं उसका अनुभव करते, क्योंकि उसका पहले हमने अनुभव नहीं किया है। जब किसी को समझाना है, किसी को कुछ लेसन देना है, तो पहले स्वयं को उस स्वरूप का, उस स्थिति का अनुभव पहले करना है, उसके बाद फिर उसको समझाते हुए उस स्थिति में रह करके उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उसको अभ्यास करते करते उसको समझाएंगे तो उसको तीर लगेगा। वो अभ्यास नहीं करते हैं तो तीर नहीं लगता है। बाबा कहते हैं सेवा नहीं होती है। सेवा नहीं होने का कारण बाबा कहते हैं तुम्हारा योग नहीं है। तो कितने देखो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम्हारा योग नहीं है, सेवा कहाँ और योग कहाँ। लेकिन जब तक हमारी उस स्थिति नहीं बनती है, जब हम उस स्थिति में स्थित नहीं होते हैं तब तक सेवा नहीं होती। पहले हमारी स्थिति को उपराम बनाना है, स्थिति को ऊंचा बनाना है। यहाँ ध्यानी दादी थे जो मम्मा की मौसी थी, एक बार कोई भाई को हॉस्पिटल में लेके गए तो उसको छोटा सा था ऑपरेशन और वो चिल्लाने लगा, तो उसने डॉक्टर ने बोला देखो ध्यानी दादी कितने मीठा बाबा, प्यारा बाबा करती हो, तुम इतना जवान होकर के ओ ओ चिल्ला रहे हो। माना देखो कितना फर्क पड़ता है, जीवन में उतारा है, देह भान से मुक्त हुए हैं। तो जब तक हमारा देह भान है तब तक हम अशरीर नहीं बन सकते, जब तक अशरीर नहीं बने तब तक देह का आकर्षण होता रहेगा। देखो दादी गुलजार का जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद डॉक्टर देखने के लिए आए तो बोले यहां तो सब मौज में बैठे हुए खुशी में नाच रहे और पेशेंट कहां चला गया। तो बोले पेशेंट तो कंप्लेन करता है चिल्लाता है और यहां तो सब खुशी में बैठे हैं, क्या हुआ कहां गया पेशेंट। तो बोले डॉक्टर साहब हम राजयोग करते हैं, आप भी राजयोग सीखो। देखो कितनी बड़ी सेवा हो गई। अशोक मेहता ज्ञान में आए इसका कारण दादी गुलजार। तो कैसे सेवा होती है। जगदीश भाई एक बार लेटे थे कमरे में कर रहे थे तो भाई आया तो उसको लगा कि भाई भाई साहब को बहुत दर्द होगा तकलीफ होगा उसको। तो बोला इधर आओ। बोला हूं का अर्थ क्या होता है। आपको लगा होगा भाई साहब को तकलीफ होगी। तकलीफ नहीं है लेकिन हूं का अर्थ क्या होता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजय रतन हूं, सफलता मेरा जन्म सधिकार है, ये अभ्यास है। अच्छा है ठीक है ना, ऐसे बोला। दूसरा भाई रमेश भाई जो इधर है ना डाइनिंग में, बॉम्बे में था पहले, तो मैंने कैसे हर परिस्थिति को सहज बनाना। वो क्वीन मदर थी जो दीदी की मम्मी, वो कहती थी जुक जुक सिख सिख, जीना तेरी गली में मरना तेरी गली में। एकदम जैसे मूर्ति की तरह बैठी रहती थी हमेशा, कोई भी आएगा तो बस उसको यही मंत्र देती थी। कैसे जीवन में सहनशीलता अपनाई। कितने बड़े घर की थी, कितना बड़ा उसका नौकर चाकर सब कुछ था, कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जब बाबा मिला तो बाबा को इसके लिए, जब उसके कारण सारा परिवार आया इसलिए उसको क्वीन क्वीन मदर कहा। क्वीन माना जो मक्खियों में जो रानी होती है, उसको उसके कारण सारा, एक रानी के पीछे सारा झुंड आता है, तो उसके पीछे सारा परिवार आया ज्ञान में, इसलिए बाबा ने उसका नाम क्वीन मदर रखा था। ऐसे विश्वरतन दादा देखो बैठे रहते थे, कोई भी आता था तो उसको कहते थे कि लास्ट सो फास्ट, और फास्ट सो फर्स्ट जाना है तो जा सकते है। बोला एक मास का स्टूडेंट भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। कैसे जा सकता है, बस एक ही लक्ष्य, जब एक लक्ष्य होगा तो जा सकते। किसी को भी देखना नहीं, बस कहां भी नेगेटिविटी में कहीं भी नहीं जाना, बस यही लक्ष्य, बस मुझे पास होना है, मुझे पास विथ ऑनर बनना है। तो जैसा हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा वैसे ही हमारे लक्षण आएंगे। अगर लक्ष्य हमारा थोड़ा भी कम है, भाई कैसे मैं आ सकता हूं, इतने लोग हैं, इतने हजारों लोग हैं, इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, इतनी योग तपस्या किया हुआ है, तो वो तो सब बहुत आगे चले गए, मैं तो बहुत पीछे आया हूं, मैं कैसे जा सकता हूं। लेकिन जो बाबा ने कहा है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, तो जरूर जा सकते हैं। लेकिन कहां भी कुछ भी दिखाई न दे, बस एक ही लक्ष्य, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। मीरा ने क्या कहा, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। देखो उसको सब कुछ यही दिखाई देता था, मेरा तो एक गिरधर गोपाल, कुछ भी नहीं, जहर का प्याला भेजा अमृत समझ करके पी लिया। देखो भगवान भक्ति में भी इतनी मदद करता है। तो बाबा कहते मैं तो अभी तुम्हारे सन्मुख हूं, तुम्हारे साथ हूं, तो मदद नहीं करूंगा। जरूर बाबा मदद करता है। बाबा को दिल से याद करेंगे तो बाबा हाजिर हो जाते हैं। थोड़ा भी मिक्स रेटी आएगी तो फिर नहीं मदद का अनुभव करेंगे। तो मदद का अनुभव करने के लिए निश्चय बुद्धि विजयंति, संशय बुद्धि विनिश्चति। निश्चय में ही विजय है। तो आज बाबा ने कहा ना, भाग्य का सितारा चमकेगा। कब चमकेगा? भाग्य का सितारा चमकने का आधार है निश्चय। देखो, किसी भी परिस्थिति आती है, परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति बाबा के तय साइड सीन है, तो उस पर हमें विजय पाना है। साइड सीन तो साइड सीन ही है, और हमारा लक्ष्य मंजिल तक है। हमारा लक्ष्य जहां पहुंचना है वहां तक है लक्ष्य हमारा। तो लक्ष्य कितना ऊंचा है, तो उसी लक्ष्य के प्रमाण ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जो हमारे सात गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति। तो बाबा कहते एक एक गुण का स्वरूप बनना है, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप माना प्रकाश। अंधकार समाप्त हो गया, अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया, जीवन में रोशनी आ गई। जहां रोशनी है वहां सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति सब कुछ है। जहां अंधकार है वहां दुख, अशांति, रोग सब कुछ है। तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया, ज्ञान की रोशनी आ गई, ज्ञान की शक्ति आ गई, तो हमारा जीवन सुख, शांति, आनंद और खुशी का जीवन बन गया। तो दूसरा है पवित्रता। तो पवित्रता हमारा स्वधर्म है, स्वकर्म है, लक्ष्य है, हमारे लक्षण है। आदि अनादि हम पवित्र, परम पवित्र आत्मा है। शिव बाबा हमारा बाप पवित्रता के सागर है, तो हम आत्माएं भी परम पवित्र आत्मा है। तो उसका जब हम अनुभव करते हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो दूसरों को भी हम उसी स्वरूप से देख सकते हैं, उसी स्वरूप में देखते हैं। जब दूसरों को भी जब हम आत्मिक भावना से देखते हैं, तो उसमें भी ये सातों ही गुण नजर आते हैं। जब हमारे अंदर देव का भान रहता है, तो हमारे अंदर वो गुण नहीं दिखाई देता है। तो बाबा ने तो हमें कहा कि बच्चे, तुम्हें तो हर एक के गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना है। अवगुण देखने का जो नेत्र है वो हमारा बंद, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना है। इसलिए बाबा ने कहा है कि दुनिया विनाश हो जाएगी। जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो विनाश हो जाएगा तो फिर उसको देखना ही नहीं है। तो देखना क्या है हमें? देखते हुए भी नहीं देखना है, और नहीं देखते हुए भी देखना है। देखो, शरीर तो देखते हैं उसको नहीं देखना है, आत्मा नहीं दिखाई देती उसको देखना है, शिव बाबा हमें नहीं दिखाई देता फिर भी देखना है। देखना है माना तीसरी आंख से देखना है, समझना है भाई आप आत्मा हो, आप ज्योति बिंदु हो, आप शिव बाबा के बच्चे हो। भले आप महिमा नहीं करो, अंदर नहीं अंदर महिमा करे करो, कि आप तो शिव शक्तियां हो, आप तो दुर्गा हो, आप महावीर हो, आप विजय रतन हो, आप पांडव हो। देखो कितनी खुशी होगी, हमें भी पहले खुशी होगी, और जिसकी महिमा करेंगे उसको ही खुशी होगी। अंदर ही अंदर महिमा करेंगे तो उसको अनुभव होगा कि कि हाँ ये भाई बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कि पॉजिटिव का पॉजिटिव पर असर करता है, नेगेटिव का नेगेटिव पर असर करता है। अगर हमारी किसी के प्रति व्यर्थ भावना है, किसी का अवगुण हम देखते हैं, तो जरूर बाबा कहते हैं कि दीवालों को भी कान होता है। को हमारे को किसी का परचिंतन करते हैं तो जरूर उसके पास पहुंचेगा। हैं? वो तो आपको साइंस का ज्ञान है, हमें तो इतना पता नहीं, इसलिए तो बाबा कहते हैं कि पॉजिटिव वही जो तार के तार चार जोड़ना है ना, इसलिए। लेकिन जब तक ऊपर का रबर नहीं निकालेंगे तब तक उसका जॉइंट नहीं होगा ना, तो हमें तो ये देह भान का रबर उतारना है। किसी कोई दादी को बोला, दादी हमारा तो योग नहीं लगता है, तो दादी ने कहा कि जब तक तुम अपना देह भान का रबर नहीं उतारे तब तक तुम्हारा तार कैसे जुटेगा। तो जब तक हम मंदिर में जाते तो कहे कि चमड़ा बाहर निकालो, चप्पल जूता बाहर निकालो, अरे तुमने देह का भान ही नहीं भूला है तब तक तुम्हारा योग कैसे लगेगा। तो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। देखो पहला लेसन और लास्ट लेसन यही है, एक सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास। जो एक सेकंड में अशरीरी बनेंगे वही पास विथ ऑनर बनेंगे। अगर उसमें थोड़ा एक सेकंड के बाद ज्यादा टाइम लगा, दो मिनट लगा, पांच मिनट लगा, घंटा लगा, दो घंटा लगा, तो फिर धीरे धीरे मार्क्स कम होती जाएगी। सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग में आ जाए। अरे बाबा कहते हैं एक एक जन्म तुम्हारा कम होता जाएगा, सत्युग का 8 जन्म है ना, तो जितनी मिनट कम होती जाएगी उतना। तो एक सेकंड में बाबा ने कहा है कि एक सेकंड में हमें अशरीरी बनना है, तो कितना समय का अभ्यास होगा तभी हम एक सेकंड में अशरीरी बनेंगे। देखो ब्रह्मा बाबा एक सेकंड में अशरीरी बने, देह के भान से मुक्त हुए, तो कितना लंबा समय का अभ्यास के बाद कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, दादियों को फॉलो करना है, एक ही बाबा को फॉलो करो, बाप और दादा, बस निराकार और साकार। साकार ने क्या किया, सब कुछ अर्पण करके मोह नष्ट मोहा बन गई। देखो अभी हमारे पास थोड़ा भी है तो कम से कम चीजों से चलाओ, कहते हैं जितनी डिश ज्यादा उतना डिशेस ज्यादा, जितनी ज्यादा चीजें खाएंगे उतनी बीमारियां ज्यादा बढ़ेंगी। सब्जी और रोटी खाओ कोई बीमारी नहीं होगी, सलाद खाओ बस कितना, लेकिन जितना चीजें ज्यादा खाए आज 37 प्रकार का है। किसी भाई ने पूछा जगदीश भाई को, भाई यहाँ इतनी वैरायटी क्यों बनाते हो, तो बोला कि देखो यहाँ तो बाबा का घर है, अगर हमारा भोजन आपको देंगे तो खाएंगे ना, उसमें मिर्ची होगा ना इसमें नमक होगा ना उसमें तेल होगा, फीका होगा, आप उसको खाएंगे खिलाएंगे तो खाएंगे। बोला हमारा भोजन फीका होता है तो कद्दू और तूरी दो ही चीज बनता है, दूसरी कोई चीज बनाते ही नहीं है, क्योंकि वही बनाते हैं पेशेंट खाते में, वही दो चीज बनती, कद्दू बनेगा कभी तूरी बनेगी, कभी कद्दू बनेगा कभी तूरी बनेगा, कभी पेठा बनेगा, जो कोई चीज कोई लोग खाते नहीं उसको, क्योंकि उसमें फीका होता है ना, मिर्ची होता है ना मसाला होता है। तो बोला वो चीज आप खाओगे, यहाँ तो बाबा के घर में वैरायटी बच्चे आते हैं, किसी को बिना नमक का खाना है, किसी को नमक वाला खाना है, किसी को मिर्ची वाला खाना है, किसी को आलू नहीं खाना है, किसी को दाल खाना है, किसी को दाल नहीं खाना है, किसी को अचार खाना है, तो सब चीजें रखते, पापड़ खाना है तो यहाँ तो सब आप मेहमान है तो आपके लिए रखा है सब चीजें, बाकी हमारा चीज आप भोजन करो। एक बार क्या हुआ, एक भाई बाबा के पास आए तो बाबा बहुत प्यार से कोई चीज खा रहे थे, तो बच्चे खाओगे, तो बोला दिया तो बोला कि न खा सके न फेंक सके, करेला था कड़वा करेला, वो भी बॉयल, न इसमें मिर्ची न नमक कुछ नहीं था। तो लगा कि बाबा बहुत अच्छी चीज खा रहे होंगे, इतना प्यार से खा रहे थे। तो बाबा को शुगर था तो बाबा बॉयल करेला खाते थे। तो कैसे देखो, कोई भी चीज खाते हैं तो कितनी प्यार से ब्रह्म भोजन समझ करके उसको, जो कोई चीज आप फीकी चीज खाओ, रोटी सब्जी खाओ, लेकिन बाबा को भोग लगा के खाओ, ब्रह्म भोजन समझ के खाओ। मिर्ची मसाले वाली कोई चीज की दरकार नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें बाबा की शक्ति भर जाएगी। जब बाबा की शक्ति भर जाएगी तो वो प्रसाद बन जाएगा। जब हम, बाबा ने एक बार कहा था कि मधुन वाले तो खाना नहीं खाते, प्रसाद ही खाते हैं। जो प्रसाद खाते वो कितने भाग्यवान है, क्योंकि बाबा को भोग लगता है, बाबा का भंडारा है, बाबा के भंडारे से ब्रह्म भोजन बनता है। तो कितने प्यार से उसको स्वीकार करो, जो मिले। अपने शरीर को भी जो सूट करे वही खाओ। यहाँ तो हजार चीजें रखी रहती है, लेकिन आपको क्या चीज सूट होती है? आइसक्रीम बना है लेकिन आपको शुगर है। एक भाई को शुगर था लेकिन उसने आइसक्रीम खाया, फिर दूसरे भाई ने भी दिया, वो भी खाया, तीसरे भाई ने दिया, वो भी खाया, हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंचा, रास्ते में ही शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो देखो क्या फायदा। तो बाबा कहते हैं कि ये शरीर है ना आपका, क्या है ये, अमूल्य है। इसको, एक घोड़ा को जब प्यार से चलाओगे तो चलेगा, उसको चाबुक मारेंगे तो बैठ जाएगा। तो बाबा ने कहा ये 84 जन्मों का, अभी इसी से ही तुम भाग्य बना सकते हो, इसी से ही तुम विजय रतन बन सकते हो। तो इसका गुणगान करो, वाह मेरा शरीर, वाह कितना भाग्य है मेरा, जो अंतिम जन्म में इस शरीर के द्वारा हम क्या से क्या बन रहे हैं, नर से नारायण, विश्व का मालिक बन रहे। ओहो वाह वाह। तो इतना ऊंचा भाग्य, इतनी ऊंची किस्मत है, कोई भी चीज में आसक्ति न जाए। जब जो चीज हमें सूट नहीं करती वो हमारे कोई चीज काम की नहीं है, जो हमें सूट करती है वही हम खाएं। और हर एक चीज रखी है, हर एक चीज हर एक के लिए नहीं है, हर एक चीज हमारे लिए नहीं है। जिसको जो पसंद आता है भाई ये चीज वो खाता है तो मैं भी खाऊं, ऐसा नहीं। मिर्ची खाता है, एक भाई को क्या हुआ, मिर्ची खाने का अच्छा लगा, मिर्ची खा रहा था तो भाई साहब आए, क्या बात है, बोला बाबा का चीज वेस्ट ना जाए। अरे तुम मिर्ची इतना खाए, तीखी है, वेस्ट की क्या बात है, फेंको इसको। विदेशी ने कभी मिर्ची देखी नहीं, लोग कहते ये सब लोग इंडिया वाले खाते, मैं भी खाऊं। जैसे किसी ने बोला ना भाई ये खेती करता है लाल है, क्या बात है, ये तो बहुत लाल है। बोलता क्या खाते हो, बोला लाल मिर्ची और रोटी खाता हूँ। लेकिन उसने भी लाल मिर्ची खाना शुरू किया तो उसको तो अल्सर हो गया। बोले क्या है भाई, तुम तो बैठे रहते हो कुर्सी में कंप्यूटर के सामने, तुम्हें कैसे हजम होगा, वो तो खेती का काम करता है, इतनी मेहनत करते हैं और उसको कोई चीज ऐसी घी दूध मलाई वो खाते नहीं है, तो वही रोटी सब्जी से ही वो अपना मेहनत करके उसको हजम कर सकता है, आप वो तो हजम नहीं कर सकते। तो जरूर, तो बाबा का कहने का भाव यह है कि हमें हर एक चीज में पॉजिटिव बनाना है, हर एक चीज हमें शुभ भावना से, कल्याण की भावना से, हर एक के अंदर गुण देखना है, अवगुण नहीं देखना है, गुणों की माला ही स्मरण करनी है। जब तक तब हम गुणवान बनेंगे, नहीं तर यहीं रह जाएंगे। हमें तो जाना कहाँ है, हमें तो क्या बनना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो देखो हमारा लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो इतने ऊंचे लक्ष्य तक जाने के लिए हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। जब हम पॉजिटिव बन जाएंगे तो हमारे लिए सुखमय संसार आ जाएगा। ओम शांति।
कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा। सागर स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, लो अनुभव प्रभु प्यार का।